नमस्कार भारत, 2 जून दिन गुरुवार, मैं हूं संदीप सोनी। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में कांग्रेस पर सियासी संकट के बादल। मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा,
हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज सही है कि सरकार को गिराने के लिए काफी टाइम से कोशिश चल रहे थे।
गुजरात दंगों से जुड़े गुलबर्ग सोसाइटी मामले में आज आने वाला है अदालत का फैसला। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में सूखे ने बढ़ाई महिलाओं की मुश्किलें।
अब तो बारिश भी नहीं है, खाने पीने का सवाल है और काम का भी सवाल है। हमारे पास तो किसी ने कोई काम दिया तो मैं कर सकती हूँ, और इनको भी काम दिया तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई काम देने को ये हमारे को तैयार नहीं, तो क्या करेंगे।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रभात पांडे से। मेघालय में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने चिंता जाहिर की है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। नेताओं ने कथित तौर पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता राज्य के 2 बड़े कैबिनेट रैंक के मंत्रियों के संपर्क में हैं। बीते सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में मेघालय में हिस्सा लिया था। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक होटल पर बंदूकधारियों के हमले में कम 10 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 2 सांसद भी शामिल हैं जो उस होटल में रह रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर एम्बेसडर होटल के बाहरी गेट पर धमाका करने के बाद होटल में दाखिल हुए। हमले के फौरन बाद चरमपंथी संगठन अल शबाब ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अमेरिका में पुलिस का कहना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में गोलीबारी की घटना में बंदूकधारी समेत 2 लोग मारे गए हैं। परिसर को बंद कर दिया गया था, जिसे अब फिर खोल दिया गया है। 2 शव इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की इमारत में मिले हैं, जिनमें से किसी की भी पहचान नहीं हो पाई है। लॉस एंजलिस पुलिस प्रमुख चार्ली बेक ने संवाददाताओं को बताया है कि घटनास्थल से एक बंदूक बरामद हुई है। पाकिस्तान में जिस स्कूल शिक्षक को मंगलवार को कुछ लोगों ने आग लगा दी थी, उसकी अस्पताल में मौत हो गई है। मारिया नाम की इस शिक्षक के परिवार का आरोप है कि जब उसने एक शख्स के शादी के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, तब उस पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने बीबीसी को बताया कि कुछ लोग ज़बरदस्ती मारिया के घर घुस आए, उसे मारा पीटा, फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हिना जिलानी के मुताबिक मुल्क में औरतों के खिलाफ इस तरह के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हिना जिलानी ने कहा,
They know that they can do this and get away with it. There are legal flaws in this country.
अपराधियों को पता है कि वो गुनाह करने के बाद भी महफूज रहेंगे। देश के कानून में इतनी कमियां हैं जिसकी वजह से ऐसे अपराध होते रहते हैं। पुलिस महकमा भी सुस्त है, और ऐसे गुनाहगारों को काबू में करने के लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, वो भी मुल्क में नहीं है। अगर बिना खौफ के सही तरीके से अपराधों की जाँच की जाए तो उनमें काफ़ी कमी आएगी, लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं। ये थी पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हिना जिलानी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस में ज़बरदस्त बाढ़ की वजह से लोगों के जीवन पर बुरा असर पड़ा है। कई शहरों में पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पेरिस में कई सड़कों को बंद कर दिया गया है और ऐसे कई पर्यटक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है जहाँ जाने के लिए नावों की ज़रूरत पड़ती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। कार्यक्रम की शुरुआत भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय से, जो सुर्खियों में अक्सर नहीं रहता है। आजकल ये राज्य चर्चा में है क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की तर्ज पर मेघालय में भी कुछ उठापटक करने की तैयारी कर रही है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के नेताओं में मतभेद होने की बात भी सामने आ रही है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर उठाने की कोशिश कर रही है। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ऐसे किसी संकट से इनकार कर रहे हैं। सुनेंगे उनसे बातचीत, लेकिन पहले दिलीप शर्मा की ये रिपोर्ट सुनते हैं।
मेघालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लपांग के नेतृत्व में पार्टी के कई विधायकों का एक गुट कथित तौर पर मौजूदा मुख्यमंत्री मुकुल सांगमा को हटाने के प्रयास में बताए जा रहे हैं, जबकि लपांग मेघालय सरकार के मुख्य सलाहकार भी हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री संगमा के कामकाज के प्रदर्शन को लेकर पार्टी के कुछ नेताओं की नाराजगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन तुरा लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री की पत्नी दिकांची डी सिरा की हार से उनके विरोधियों को मुंह खोलने का अब मौका मिल गया है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी ए संगमा के बेटे कॉनराड संगमा ने कांग्रेस उम्मीदवार दिकांची को 1,92,000 से भी ज्यादा वोटों से मात दी है, जबकि इस संसदीय क्षेत्र में 24 विधानसभा सीट हैं और उनमें से 22 सीट कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में मुकुल संगमा का विरोधी गुट हाईकमान को ये समझाने में जुटा है कि इस क्षेत्र से संगमा अपनी पकड़ खो चुके हैं और जल्द ही उनको नहीं बदला गया तो असम की तरह मेघालय भी कांग्रेस के हाथ से फिसल जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री संगमा के समर्थन वाले नेताओं का ये आरोप है कि भाजपा मेघालय सरकार के पीछे पड़ी है और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हिमंत विश्व शर्मा बागी खेमे के कई नेताओं के साथ संपर्क में हैं। इन आरोपों में कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की तर्ज पर मेघालय में भी भाजपा कांग्रेस से असंतुष्ट खेमे को बगावत के लिए उकसा रही है। मेघालय भाजपा के प्रवक्ता बासु चक्रवर्ती ऐसे आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं,
कांग्रेस के अंदर में इतना विभाजन है, इसमें दो गुट है, एक हो गया लपांग ग्रुप और दूसरा गुट हो गया हमारे मुकुल साहब, दोनों में आपस में लड़ाई करते हुए वो खुद खत्म हो जाए, और ये जो गुट है ये गुट है एंटी कांग्रेस ग्रुप जो कांग्रेस के साथ नहीं चलना चाहते, इनके साथ में एक रीजनल जितने भी प्रांतीय जितने भी संगठन है सबको एक मंच में लेकर चलने की बात, उनका जो दुकानदारी है इतना दिन की जो दुकानदारी है वो बंद होने वाली है।
60 सीटों वाली मेघालय विधानसभा में कांग्रेस के 30 विधायक हैं, जबकि उसे एनसीपी के 2 और 11 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। मुकुल संगमा गारो जनजाति से आते हैं और डीडी लपांग खासी समुदाय से। ऐसे में कांग्रेस के इन दो दिग्गजों के बीच सियासी लड़ाई जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है वो न केवल पार्टी को महंगी पड़ने वाली है बल्कि उन पिछड़े लोगों को भी भारी पड़ती दिख रही है जो इन नेताओं से विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
तो जैसा कि अभी आपने दिलीप शर्मा की रिपोर्ट में सुना, मेघालय में कांग्रेस के नेताओं में मतभेद है और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की तर्ज पर मेघालय में भी सियासी उठापटक की कथित तौर पर तैयारी कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री मुकुल संगमा राज्य में सियासी संकट को मीडिया की कारस्तानी बता रहे हैं। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा से बात की और सबसे पहले यही जानना चाहा कि सियासी संकट के बारे में मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो कितनी सही हैं?
देखिए, हम जो सिचुएशन है, जो सिचुएशन था वो हैंडल कर चुके हैं और सरकार जब हम चलाते हैं तो ऑफ एंड ऑन इसका कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, सो वी कीप ऑन डीलिंग विद द सिचुएशन एंड वी कीप ऑन गोइंग। जब सरकार चलाते हैं तो उसका बाहर से जो थ्रेट आते हैं, कोई डिस्क्लोज करने के लिए कोई अटेम्प्ट करते हैं, ये तो कुछ नया चीज नहीं है, ये तो नॉर्मल फेनोमेनन है हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम में, हमारा पॉलिटिक्स में। लेकिन हम आपको ये बताना चाहता हूँ कि वी नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन, वी हैव आवर ओन इनहेरेंट मैकेनिज्म टू डील विद द सिचुएशन फ्रॉम एनी थ्रेट।
जी, पर ऐसी खबरें आ रही हैं मीडिया में कि सोमवार को एक चिट्ठी लिखी गई है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को।
कोई अगर मीडिया में ऐसा कुछ खबर एक एक्साइटिंग जुसी न्यूज बनाए तो इसको रेस्पॉन्ड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पास अगर वो कॉपी नहीं है, आई डोंट थिंक इट मेरिट्स एनी डिस्कशन।
तो ऐसा कोई संकट नहीं है राज्य सरकार को, कोई संकट नहीं है?
देखिए, काफी बार ऐसे कुछ होते रहता है और ये तो आपको मैंने बताया कि ये कुछ नया चीज नहीं है। सरकार अगर चलाएंगे तो हमको भी पता चलना चाहिए कि कैसे हमारा अपना सरकार को इंसुलेट करे, कोई थ्रेट टू डिसलॉज द गवर्नमेंट से हम हाउ टू इंसुलेट द स्टेट गवर्नमेंट। हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक इनहेरेंट मैकेनिज्म है, वो टाइम टेस्टेड मैकेनिज्म है, तो वो देखिए हम चल रहा है, सरकार चला रहा है, चलते रहेंगे। हमारा फोकस एजेंडा है डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, ऑफ एंड ऑन जब चैलेंजेस आते हैं हम उसको डील करते हैं, हम सॉर्ट आउट करते हैं, हम डिफ्यूज करते हैं
जी।
हम काफी कैपेबल है वो सब करने में, बरकरार रहेंगे, हम इलेक्शन तक चलेंगे, हम फिर सरकार बनाएंगे, फिर नजर रख चुके हैं कि कोई मिस एडवेंचर पॉलिटिकल मिस एडवेंचर करने में कोई लगे हुए तो उस पे हम नजर रखे हुए और वी नो हाउ टू डील विद एनी काइंड ऑफ मिस एडवेंचर पॉलिटिकल मिस एडवेंचर बाय फ्रॉम एनी एंगल।
लेकिन आप किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहेंगे?
देखिए, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज सही है कि सरकार को गिराने के लिए काफी टाइम से कोशिश चल रहे थे तो हम उसको हैंडल कर रहे हैं।
देखना दिलचस्प होगा मेघालय में आने वाले दिनों में सियासत किस तरफ जाती है। ये थे मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा, उनसे बात कर रही थी हमारी सहयोगी सुशीला सिंह।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9,835, 9,915, 11,995 और 15,510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
वर्ष 2002 के गुजरात दंगे आप भूले नहीं होंगे। दंगों के ऐसे 9 मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई गई, जिनमें से एक मामला अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी का है। आज इस मामले में अदालत का फैसला आने वाला है। क्या है ये मामला और क्या महत्व है आज आने वाले अदालती फैसले का, चर्चा करने के लिए बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद स्टूडियो में मौजूद हैं। जुबैर साहब, सबसे पहले क्या है ये पूरा मामला?
देखिए, 27 फरवरी 2002 के दिन साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन पे जब हमला हुआ, उसमें 59 कार सेवक मारे गए थे, उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर गुजरात के कई इलाकों में दंगे शुरू हुए थे, जिसमें अहमदाबाद में भी कई जगहों पे हमले हुए थे और गुलबर्ग सोसाइटी मुसलमानों की एक सोसाइटी जहाँ पर कम से कम 150 के करीब लोग रहते थे, तो वहाँ पर सुबह से ही हमला चारों तरफ से घेर लिया गया था गुलबर्ग सोसाइटी को, और 11 बजे के आसपास वहाँ पर वो जो दीवार तोड़ के वहाँ पर लोग आए और एहसान जाफरी जो फॉर्मर एमपी हैं कांग्रेस के थे, उनके घर पे लोगों ने पनाह ली हुई थी, वहाँ पर हमला किया उन्होंने और घर को आग लगा दी। तो इसमें 69 लोगों की इसमें जाने गई थी, जिसमें एहसान जाफरी खुद उनको बाहर ला के उन्होंने मॉब ने मारा था। तो इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया, क्योंकि लोकल अदालत में जो पीड़ित हैं उनको कह रहे थे कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में इसकी पूरी तफ्तीश कराई एसआईटी के द्वारा, और उसके बाद अब जो है ये मामला अदालत जो है इस पर अदालत ने फैसला आज सुनाना है, और इसमें 63 के करीब जो है वो अक्यूज्ड है, 4 की मौत हो चुकी है, तो 63 लोगों का फैसला होना है।
ये बताएं कि आज जो अदालत का फैसला आ रहा है इस मामले में, उसका महत्व किस तरह से देखा जाए, किस दिशा में इसका नतीजा जब आएगा तो सियासत और सब तमाम पहलुओं के हिसाब से देखें क्या महत्व होगा इसका?
देखिए, जो पीड़ित है उनका ये एक तरह से 14 साल हो चुके हैं, तो जब मैं भी कई बार वहाँ गया हूँ गुलबर्ग सोसाइटी में उनके पीड़ितों से मिला हूँ, तो उनका एक ही ये था कि भाई हमें इंसाफ मिलना चाहिए। गुजरात के आमतौर से लोग वहाँ पर ये कहते हैं कि भाई लेट्स मूव ऑन, अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसको। लेकिन इन पीड़ितों के परिवारों का कहना है कि भाई हम भूल कैसे जाए, हमारे लोग मारे गए हैं, एक शहीद साहब है जिनके 10 परिवार के 10 सदस्य मारे गए, तो वो कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। जब अदालत ये फैसला सुना देगी हमारे पक्ष में या हमारे विरोध, हम इसको मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तब हम मूव ऑन कर सकेंगे। हमारे लोगों को मारा गया है और हमें इंसाफ चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा इसका महत्व यह है कि लोग जो पीड़ित हैं वो आगे बढ़ सकेंगे। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह के दंगे हुए हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, उसमें ये भी समझ में आएगा लोगों को कि भारत में अदालती कार्रवाई समय लेती है लेकिन इंसाफ होता है।
बहुत शुक्रिया। गुजरात दंगों से जुड़े गुलबर्ग सोसाइटी मामले में आज आने वाला है अदालत का फैसला, और इस बारे में तफसील से बता रहे थे बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद। और अगली खबर भारत प्रशासित कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दक्षिण कश्मीर की अनंतनाग सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। महबूबा मुफ्ती अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन की वजह से खाली हुई सीट पर ऐसे समय चुनाव लड़ रही हैं जब वो सैनिक कॉलोनी, पंडितों की बस्ती और अन्य विवादित मुद्दों की वजह से विपक्ष के लगातार निशाने पर बनी हुई हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
श्रीनगर में जारी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अपोजिशन ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को कई विवादित मुद्दों पर घेरे में रखा है। सैनिकों के लिए अलग कॉलोनियों की स्थापना के प्रस्ताव, कश्मीरी पंडितों की अलग कैंपों में वापसी की योजना और हंदवाड़ा में नागरिकों पर पुलिस की फायरिंग को लेकर पहले ही राज्य में अलगाववादियों ने आंदोलन चला रखा है। विधानसभा में भी अपोजिशन के विधायकों ने इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार के विरुद्ध मोर्चा बांधा है। पंडितों की वापसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अलग कॉलोनियां जरूरी हैं क्योंकि वो कबूतरों को बिल्ली के आगे नहीं डाल सकती। इस रिमार्क पर समाज समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पर इनकी जमकर आलोचना हुई और अपोजिशन ने कई बार सदन से वॉकआउट किया। इनके इस वक्तव्य का इतना विरोध हुआ कि महबूबा मुफ्ती अपनी इस बात को स्पष्ट करने पर मजबूर हो गईं।
मैंने एक मिसाल दी थी क्योंकि जब उसको ऐसा उल्टा किया गया जैसे कश्मीर का हर मुसलमान मिलिटेंट है, जो आपने एकदम कंपैरिजन किया, इसने तब कश्मीरी मुसलमानों को बिलीव कहा क्योंकि कश्मीरी मुसलमानों से तो डर नहीं है उनको अगर डर है तो उनसे किया।
बिल्ली कबूतर का विवाद तो टल गया है, लेकिन सैनिक कॉलोनियों को लेकर घाटी में तनाव पाया जाता है। श्रीनगर की जामा मस्जिद के इमाम हाई ने पहली बार एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सैनिक कॉलोनी के प्रस्ताव की आलोचना की।
हिंदुस्तान यहाँ एक नई गेम खेलना चाहता है, यहाँ के पंडितों को वो कॉलोनियों में बसाना चाहता है और ये जो साबिक फौजी है उनके लिए भी अलग कॉलोनियाँ, क्या मतलब है इसका? यानी वो नफरत की बुनियाद को कायम करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं देंगे।
गठबंधन सरकार में पीडीपी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन बीजेपी इसका विरोध नहीं कर रही है। भाजपा के नेता और उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह कहते हैं कि अभी सरकार के पास ऐसा कोई लिखित प्रस्ताव नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि राज्य के सैनिकों को यहां बसाने में कोई हर्ज नहीं है।
उसमें मुस्लिम भी है जिसमें कश्मीरी स्पीकिंग मुस्लिम है, आम मुस्लिम भी है, उसमें सिख भी है, उसमें बाकी लोग भी है, उनके लिए बनेगा। तो इसलिए ये कश्मीरी पंडित कॉलोनीज है या इसको एक टर्मिनल कलर देके एक सियासत की जा रही है वो सही नहीं है। दूसरी बात है जो सैनिक कॉलोनी की बात हो रही है, 1979 में जम्मू में कॉलोनी बनी, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो कॉलोनी बनी, उस वक्त शायद शेख साहब की सरकार थी तो इस प्रकार का था तब बनी। वहां पर भी सभी लोग सैनिक हैं जो जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट हैं वहां रह रहे हैं।
इन नीतियों को कश्मीरियों के विरुद्ध साजिश जताते हुए अलगाववादियों ने आंदोलन का कैलेंडर जारी किया है, जिसके बाद कई अलगाववादी नेताओं को जेल या घरों में नजरबंद किया गया है। ऐसी परिस्थिति में महबूबा मुफ्ती 19 जून को दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ेंगी। महबूबा के लिए 6 महीने के अंदर विधायक बनना संवैधानिक मजबूरी है। ये सीट इनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद के निधन के बाद जनवरी में खाली हो गई थी। गौरतलब है एक तरफ अलगाववादियों ने सरकार विरोधी आंदोलन छेड़ा है और दूसरी तरफ विधानसभा के लंबे बजट सत्र को अपोजिशन महबूबा के विरोध इस्तेमाल कर रही है। इस बीच उत्तरी कश्मीर से विधायक इंजीनियर रशीद ने महबूबा के विरुद्ध चुनाव लड़ने की ड्रामाई घोषणा भी कर दी है। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसी परिस्थिति में महबूबा के लिए ये चुनाव जीतना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि इन्हें ये साबित करना है कि इनके पिता ने भाजपा के साथ सरकार बनाने का जो निर्णय लिया था वो सही था। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
जम्मू कश्मीर के बाद अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का जिक्र आते ही जहन में तस्वीर उभरती है एक ऐसे राज्य की जहां पानी की बड़ी मारामारी है और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मराठवाड़ा की, जहां सूखे ने महिलाओं की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। मराठवाड़ा से संजय रमाकांत तिवारी की रिपोर्ट।
मराठवाड़ा की कई महिलाएं हर रोज सुबह अपने घर से काम की तलाश में निकलती हैं और फिर दोपहर तक काम ढूंढने के बाद लौट आती हैं क्योंकि कहीं काम नहीं है। इन्हीं में से एक हैं भिसे वाघोली गांव की कांता भिसे। पति एक कलेक्शन एजेंट हैं और दिन भर मेहनत मजदूरी के बाद वो सिर्फ 1,000 रुपये महीना ही कमा पाते हैं। जाहिर है कि कांता बाई के काम किए बगैर उनका घर चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उनके पास केवल 1 एकड़ जमीन की खेती बाकी है जिसे वो अपनी बेटी मोहिनी की शादी करवाने के लिए बेचना चाहते थे, लेकिन ये सुनकर उनकी बेटी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मोहिनी की माँ कांता बताती हैं,
बेटी देख रही थी टीवी तो मैंने बोला कि इनको हम दोनों जमीन जो है वो बेच के बेटी की शादी करेंगे, उसने सुन लिया और ऐसा कर दिया।
12वीं की परीक्षा अच्छे नंबर से पास करने वाली मोहिनी अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी सुसाइड नोट से साफ है कि परिवार की मात्र 1 एकड़ जमीन बचाने के लिए इस बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया। उसके जाने के बाद परिवार का और भी बुरा हाल है। माँ कांता कहती है,
अब तो बारिश भी नहीं है, खाने पीने का सवाल है और काम का भी सवाल है। हमारे पास तो किसी ने कोई काम दिया तो मैं कर सकती हूँ और इनको भी काम दिया तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई काम देने को ही हमारे को तैयार नहीं तो क्या करेंगे।
लगातार 4 साल से जारी सूखे के बाद किसानों की जेबें पूरी तरह से खाली हैं। ऐसे में किसानों के लिए निराशा का माहौल है। ऊपर से साहूकार कर्ज दी हुई राशि की वसूली के लिए लगातार तगादा कर रहे हैं, लिहाजा विदर्भ के बाद अब मराठवाड़ा भी किसानों की आत्महत्या के लिए जाना जाने लगा है। पति की मौत के बाद विधवा पत्नी को घर, खेत खलिहान और कर्ज तीनों का बोझ उठाना पड़ता है। लातूर जिले में गाते गांव के 65 वर्षीय महाकांत माली ने खेत में आम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वजह थी घर बनाने के लिए लिया 2 लाख का कर्ज ना चुका पाना। अब पत्नी कमल माली पर 60 वर्ष की आयु में यह रकम लौटाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
उसे खेत का कर्ज देना था 25,000 और लोका का देना था 2 लाख। उसके हाथ में हाथ गए लेकिन महीने करे गए सो महीने में।
लोगों के 2 लाख रुपए देने थे, किस लिए दिए थे?
घर बनने के लिए दिए थे। वो देना नहीं अपने को हुजू होना।
क्यों?
पैसा नहीं अपने के पास, उसने नहीं दिया हम उसको पैसा।
तो वो मांग रहे थे क्या?
हाँ, मांग रहे थे वो लोग।
राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त किसान परिवारों के लिए 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मुहैया करवाया है, जिससे विदर्भ और मराठवाड़ा के सूखाग्रस्त लाखों किसान परिवारों को काफी राहत मिली है। राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त किसानों के कर्ज के पुनर्गठन के आदेश भी जारी कर दिए हैं, लेकिन जिला सहकारी बैंक उस पर अमल करने में देरी कर रहे हैं। मोहिनी के पिता पांडुरंग भिसे कहते हैं,
इत गाँव मधी खेड़े गाँव असले मुळे काम काहीच मिळत नाही।
जो ये कह रहे थे कि रोजगार हमी का काम जो है वो आदमी से काम करने की बाहर है, क्योंकि वो मशीन से किया जाता है।
मतलब मजदूरों के नाम पर ठेकेदार काम करके मशीन से? हाँ। और मजदूरों के नाम पर बिल निकालते हैं?
हाँ, मजदूरों के नाम पे बिल निकाल के मजदूरों का पासबुक लेके जाके उस पर से जो आने वाला बजट है वो ठेकेदार उठा के लेके जाता है। हमारी तरफ से पासबुक लेके जाते हैं और स्लिप उस पर साइन लेके बिल निकाल लेते हैं।
महाराष्ट्र के शेतकरी संगठन के मुखिया सत्तार पटेल से हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तक इस योजना को बदला नहीं जाएगा किसानों की स्थिति में बदलाव नहीं आ पाएगा।
गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है इसके अंदर वो सरासर झूठ है किसानों के प्रति। हम तो कहते हैं कि सीधा सीधा किसानों का जो खेत में काम करने का जो तरीका है, जिसके बाल बच्चे खेत में काम करते हैं, तो उसी को ही खेत में के काम को ही रोजगार हमी में डाला जाए और उसकी मजदूरी सीधे सीधे किसानों को दिया जाए।
मराठवाड़ा के बीड जिले में वारवा जैसे भी गाँव है जहाँ लड़कियों ने इस वर्ष सूखे के चलते शादी नहीं करने का निश्चय किया है। ये बेटियां मोहिनी की तरह जान ना देते हुए परिवार को खर्च और कर्ज से बचाना चाहती हैं। बीड जिले के वारवा गांव से संजय रमाकांत तिवारी, BBC हिंदी के लिए।
कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे 1,000 से अधिक रन बनाकर चर्चा में आए प्रणब धनावड़े अंडर 16 टीम में नहीं चुने जाने पर क्या कहते हैं, जबकि उस टीम में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को चुन लिया गया। लेकिन पहले जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां आज क्या कह रही हैं। प्रभात पांडे स्टूडियो में आ चुके हैं।
जी संदीप, कई खबरें हैं जिसमें शराब को लेकर पटना हाईकोर्ट का फैसला, कैंसर के टीके की दिशा में अहम प्रगति और टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच की रिकॉर्ड कमाई, इस तरह की खबरें सुर्खियां बनी हुई है। शुरुआत हम टाइम्स ऑफ इंडिया से करें तो इसमें छपी खबर के मुताबिक पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार में शराब को सिर्फ अपने पास रखना कोई अपराध नहीं है। एक केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि बिहार आबकारी कानून के मुताबिक शराब को बेचना और पीना ही अपराध की श्रेणी में आता है और यह कानून शराब रखने के मामले में कुछ नहीं कहता। तो जो जनता दल यूनाइटेड की नेता मनोरमा देवी शराब रखने के मामले में जेल में है, उनके रिहा होने के आसार बढ़ गए हैं। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में ही एक खबर छपी है कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक हर तरह के कैंसर से निपटने के लिए एक सर्वमान्य टीके की खोज के बेहद नजदीक पहुंच गए हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पे टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच की रिकॉर्ड कमाई की खबर छपी है। वो फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और उनकी कुल टोटल प्राइज मनी यानी कि टेनिस टूर्नामेंट से कमाई गई जो खेल की राशि है वो $100 मिलियन तक, जिसे अगर हम रुपए में बदलें तो 674 करोड़ रुपए पहुंच गई है और इस तरह से वो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में ही आपने बीते दिनों टीवी चैनलों में देखा होगा कि जो 12वीं कक्षा के परिणाम आए थे, जी तो उसमें आर्ट्स और साइंस में विज्ञान और कला क्षेत्र के जो टॉपर हैं उनसे इंटरव्यू करने के लिए टीवी चैनल पहुंच गए और उन्होंने कुछ उनके विषय से संबंधित सवाल पूछे बहुत ही साधारण से, जिनका वो जवाब नहीं दे पाए हैं। तो उसके बाद से बिहार सरकार की और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था की काफ़ी आलोचना हुई थी। तो खबर हिंदुस्तान टाइम्स में ये छपी है कि अब उन सभी टॉपर्स के दोबारा से टेस्ट कराने पर सरकार विचार कर रही है और 3 जून को ये टेस्ट हो सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण खबर है। इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि महाराष्ट्र के जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं एकनाथ खडसे, उनके परिवार ने पुणे के पास एक ज़मीन सिर्फ 3,75,00,000 रुपए दे के खरीदी, लेकिन उसके लिए जो स्टैम्प ड्यूटी उन्होंने चुकाई वो 31 करोड़ रुपए की संपत्ति के बराबर स्टैम्प ड्यूटी चुकाई है। तो इससे उन पर एक बार फिर संदेह के बादल मंडराने लगे। नवभारत टाइम्स में खबर छपी है कि जो अखलाक के घर पे मीट मिला था उसको लेके, जो मथुरा लैब की रिपोर्ट है उसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के योगी आदित्यनाथ ने अखलाक के परिवार पर गो हत्या का मुकदमा चलाने की मांग की है, तो अखिलेश यादव ने इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठाए।
और इस मामले में क्या सियासत हो रही है, अगले कार्यक्रम में सुनेंगे रिपोर्ट। और ये दिल्ली से छपने वाले अखबारों की बात हुई, अब सुनिए सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को अंडर 16 टीम में जगह मिल गई, लेकिन प्रणव धनावड़े चयन से वंचित रह गए। वही प्रणव धनावड़े जो स्कूल क्रिकेट में 1,000 से अधिक रन बनाकर चर्चा में आए थे। मुंबई में स्थानीय पत्रकार संजय मिश्रा ने प्रणव धनावड़े से बात की और अंडर 16 टीम में जगह नहीं मिल पाने पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए।
पहली बार तो खबर मैंने सुनी थी, व्हाट्सएप पे मैसेज ऐसे आए थे, व्हाट्सएप पे मैंने देखा, तो मेरे को पहले लगे तो मजाक चल रहेगा, कोई मजाक करता रहेगा, तो मैं कुछ इतना ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में थोड़ा सीरियस हुआ ये मैटर कि बहुत फेसबुक पे बहुत आने लगा, फेसबुक पे बाद में इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे सब जगह ही आने लगा, तो फिर थोड़ा ये मैटर सीरियस हो गया।
क्या होता है जब इस तरह की खबरें होती है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था?
नहीं, मेरा ऐसा रिएक्शन कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे को मालूम है क्या है प्रोसेस है और क्या है ये सिलेक्शन कैसा होता है और क्या है, मेरे को तो मालूम था। अभी जो ये लोग ऐसा जो कर रहा है तो उनको आप हम को ऐसा कुछ बोल तो नहीं सकते।
मैं थोड़ी सी आपकी और अर्जुन की दोस्ती के बारे में जानना चाहूंगा, किस तरह की दोस्ती, आप लोग कैसी खेलते हैं मैदान में, क्या उनकी खास चीज है जो आपको अच्छी लगती है, क्या आपकी चीज है जो अर्जुन को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि एक ही हम उम्र है आप लोग और 5-7 साल से एक साथ खेल रहे हैं एक मैदान में एक क्लब के लिए खेल रहे हैं।
ना, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त है, बचपन हम लोग मतलब अंडर 12 से हम लोग एक साथ है, MIG क्लब से खेलते थे हम लोग और हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। हम मतलब वो उसकी किट बैग मेरे साथ शेयर करता था, उसके बैट और बाकी किसको नहीं देता था, सिर्फ मेरे को देता था बैट यूज करने के लिए। और वो एक अच्छा फास्ट बॉलर और लेफ्टी बैट्समैन है और मैं एक विकेट कीपर और बैट्समैन हूँ, तो कभी वो बॉलिंग डालता है तो मेरे को विकेट कीपिंग करने बोलता था और मेरे को पूछता था बॉलिंग में क्या डाउट है, बैटिंग के टाइम भी मैं विकेट कीपिंग करता रहता तो मेरे को पूछता है कैसा क्या हो रहा है बैटिंग में, कुछ गलत हो रहा है क्या।
ये जो सिलेक्शन होता है इसका एक प्रोसेस मैं आपसे जानना चाहूंगा, किस तरह का प्रोसेस होता है जिसमें अर्जुन सेलेक्ट हुए हैं?
ये प्रोसेस एक्चुअली जो इधर फर्स्ट मतलब मुंबई में पयाडे ट्रॉफी करके टूर्नामेंट होता है, वो जो टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस करता है वो मुंबई के अंडर 16 के टीम में सिलेक्ट होता है। और फिर जो मुंबई के मतलब जो स्टेट के मैचेस होते हैं, स्टेट के मैचेस के जो परफॉर्मेंस करता है वो वेस्ट जोन के लिए सिलेक्ट होता है। तो मैं पयाडे ट्रॉफी में भी सिलेक्ट नहीं होता, टाइडन ट्रॉफी में सिलेक्ट नहीं होता, उसके लिए मैं स्टेट के मैचेस नहीं खेल सका, स्टेट के मैचेस नहीं खेला उसके लिए मैं वेस्ट जोन के लिए नहीं सिलेक्ट हो सका।
चलिए, आप अर्जुन को क्या बधाई देंगे?
अर्जुन और मेरा तो बोलना होता रहता है और मैं उसको बधाई देते रहता हूँ और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बोलते रहते हैं हम लोग एक दोनों से।
ये थे प्रणव धनावड़े, उनसे बात कर रहे थे मुंबई में स्थानीय पत्रकार संजय मिश्रा। और इसके साथ ही घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का समय हो चुका है, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
BBC समाचार। मेघालय में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने चिंता जाहिर की है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक होटल पर बंदूकधारियों के हमले में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। हमले के फौरन बाद चरमपंथी संगठन अल शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अमरीका में पुलिस का कहना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में गोलीबारी की घटना में एक बंदूकधारी समेत कुल 2 लोग मारे गए हैं। अमरीका, फ्रांस और ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि सीरिया के युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों के लिए विमानों से राहत सामग्री गिराई जाए, क्योंकि सीरिया की सरकार इस दिशा में काम करने में विफल रही है। पाकिस्तान में जिस स्कूल शिक्षक को मंगलवार को कुछ लोगों ने आग लगा दी थी उसकी अस्पताल में मौत हो गई है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। अगला कार्यक्रम विश्व भारती ठीक एक घंटे के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।